بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم أولياء ثم لا تنصرون۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور نسندیہ ہم نے موسیٰ کو تورات پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا اور یدی کافروں کو سمے دینے کے سمبندھ میں آپ کے پالنہار کی پرمپرا پہلے سے نردھارت نہ ہوتی تو نشچت روپ سے اسی سنسار میں ان کے بیچ فیصلہ کر دیا جاتا، اور نسندیہ وہ لوگ گہرے سندیہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور نشچت روپ سے آپ کا پالنہار ان کے کرموں کا بدلہ انہیں پورن روپ سے پردان کرے گا، اور نسندیہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس سے پورنتہ اوگت ہے۔ تو ہے پیغمبر، جیسا کہ آپ کو آدیش دیا گیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ ایشور کی اور آنے والے لوگ پرتیرودھ کریں اور ادنڈتا نہ کریں، کہ نسندیہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو ایشور اسے دیکھنے والا ہے، اور اتیاچاریوں پر بھروسہ نہ کرو کہ نرک کی آگ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے گی، اور یہ جان لو کہ ایشور کے اترکت تمہارا کوئی سہائک نہیں ہے اور کسی کی اور سے تمہاری سہایتا نہیں کی جائے گی۔
یہ تہران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز۔ آج گروار ہے اور دیبہش کی 29، شوال کی 17 اور مئی کی 19 تاریخ۔ شوتاؤ، ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ شوتاؤ، ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ آپ صدا کی بھانتی سب سے پہلے دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ سنیں گے ساپتاہک کاریکرم آج کی بات، اور سبا کا انتیم اور دوسرا ساپتاہک کاریکرم ہوگا سفل مہیلائیں۔ شروتاؤ، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی کھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ مریم مہدادی اور محمد مہدی سے سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایرانی راشٹرپتی نے کیوبا کے ساتھ سمبندھوں میں وستار پر بل دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ پشچمی دیشوں نے اپنی بھی ریڈ لائن کا اُلنگھن کیا ہے۔ چیچنیا کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ میں کیول اللہ اور پوتین کے پرتیبندھوں سے ڈرتا ہوں۔ امریکی وت منتری نے کہا ہے کہ روسی سمپتی کو سیل کرنا غیر قانونی ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
بدھوار کی رات تہران میں کیوبا کے اپ پردھان منتری کے ساتھ ایک بیٹھک کے دوران اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی نے کیوبا ایران سنیکت آرتھک سہیوگ آیوگ کے پریڑام پر سنتوش ویکت کیا ہے۔ اس اوسر پر راشٹرپتی نے کہا کہ لیٹن امریکی دیشوں سہت سامراج وادی شکتیوں کے ورودھی راشٹر جیسے کیوبا ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے۔ کیوبا کے اپ پردھان منتری ایک اچھ استریہ پرتنی منڈل کے ساتھ ایرانی ادھیکاریوں سے ملاقات اور دیوپکشی سمبندھوں کے وکاس اور وستار کے سمبندھ میں وارتا کے لیے ایران کی یاترا پر ہیں۔ کیوبا کے اپ پردھان منتری اپنی اس یاترا کے دوران تہران اور ہوانا کے آرتھک سہیوگ کے لیے بنے سنیکت آیوگ کی تہران میں آیوجت ہونے والی 18ویں بیٹھک میں بھی بھاگ لیں گے۔ ایران کے راشٹرپتی نے کیوبا کے اپ پردھان منتری سے ملاقات کے دوران تہران ہوانا سمبندھوں کو رن نیتک بتایا اور کہا ویاپار، ارتھ ویوستھا، کرشی، سواستھ اور چکتسا دیکھ بھال کے چھیتر میں سہیوگ وکسیت کرنے کے لیے دونوں دیشوں میں موجود ان گنت اور ودت کھمتاؤں کا اپیوگ کیا جانا چاہیے۔ راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ ایران اور کیوبا کے بیچ سکاراتمک اور رچناتمک دیپکچی سمبندھوں کو دونوں دیشوں کے بیچ انتراشٹری بات چیت کے چھیتر میں وستارت کیا جا سکتا ہے۔ اس بیچ کیوبا کے اپ پردھان منتری ریکارڈو کیمبریسس फरूज ने तेहरान और हवाना के बीच राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का रणनीतिक और गहराई से वर्णन किया और कहा कि लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कार्यक्रम ईरान क्यूबा संबंधों को द्विपक्षीय संबंधों के स्तर से लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में बहुपक्षीय बातचीत तक बढ़ा सकते हैं।
रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पश्चिमी देशों ने अपनी ही रेड लाइन को पार करके अपने ही मूल्यों की उपेक्षा व अनदेखी कर दी है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पश्चिमी देशों ने अपनी ही रेड लाइन पार करके अपने ही मूल्यों की उपेक्षा व अनदेखी की। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आज़ादी का खुलकर उल्लंघन किया। रूसी विदेश मंत्रालय की वक्ता का कहना था कि मॉस्को ने पूरी शक्ति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया है। जोखारोवा ने यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि यूक्रेन ने मारियोपोल नगर के बारे में बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया है। कीव के नेताओं ने वहां के स्टील के कारखानों में मौजूद लोगों के साथ विश्वासघात करते हुए उनको सौदेबाजी के लिए प्रयोग किया। यूक्रेन की सेना ने ऐलान किया कि वो स्टील के कारखाने में मौजूद अपने सारे सैनिकों को निकालने और महीनों से परिवेष्टन का शिकार इस नगर का नियंत्रण रूसी सेना के हवाले करने का प्रयास कर रही है। रॉयटर्स के अनुसार ये काम यूक्रेन के लिए खुली पराजय के समान है। रिपोर्टों में बताया गया है कि मारियोल के लगभग सारे ही हिस्से पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में हैं, किंतु इस नगर के एक कारखाने में सैकड़ों सैनिक और असैनिक अब भी छिपे हुए हैं।
चेचनिया के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में कहा है कि मैं किसी भी प्रतिबंध से नहीं डरता, मगर ये प्रतिबंध अल्लाह की ओर से हों या पुतिन की ओर से। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार रमजान कदिरोव ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ पश्चिम के प्रतिबंधों को मजाक बताया। कदिरोव ने पश्चिम के प्रतिबंधों की ओर संकेत करते हुए कहा कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ प्रतिबंध मजाक हैं और मैं किसी भी प्रतिबंध से नहीं डरता, किंतु ये प्रतिबंध ईश्वर की ओर से हो या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से हो। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि मेरी पत्नी और लड़कियां कभी भी राजनीतिक पछड़े में नहीं पड़ी हैं और इन लोगों ने कभी भी इस संबंध में काम नहीं किए हैं, परंतु पश्चिम ने उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। रमजान कदिरोव ने कहा कि पश्चिम केवल मुझे डराना चाहता है, मैं केवल ईश्वर और पुतिन के प्रतिबंध से डरता हूँ, बाकी बेकार की बातें हैं और उनका कोई मूल्य व महत्व नहीं है।
समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि रूसी संपत्ति को रोकना गैरकानूनी है और अमेरिका को रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्ति को सील करने का कोई अधिकार नहीं है। जेनेट येलन ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध आरंभ किए जाने के कारण अमेरिका को रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्ति को सील करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु अमेरिकी घटकों से इस बारे में वार्ता जारी है कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण का खर्च रूस से कैसे वसूला जाए। इसी प्रकार अमरीकी वित्त मंत्री ने कहा कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था और यही विषय इस हफ्ते G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक का असली विषय होगा और इन देशों के अधिकार इस बात के प्रयास में हैं कि वे रूस को इस बात के लिए विवश करें कि वो यूक्रेन में होने वाले नुकसान की भरपाई करे। जनरल टेलर ने इसी प्रकार चीन के संबंध में कहा कि प्रतीत ये हो रहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन ने जो कड़ी नीतियां अपनाई हैं वो वस्तुओं के उत्पादन की दिशा की एक महत्वपूर्ण रुकावट बन गई है और ये विषय खर्च में वृद्धि और आर्थिक विकास के कम होने का कारण बना है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए हथियार भेजकर जंग और मौत को बढ़ावा दे रहा है। इवो मोरालेस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार भेजकर लोगों की हत्या के अवसर को बढ़ावा दे रहा है। बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए 40 अरब डॉलर की सहायता ऐसी स्थिति में भेज रहा है जब यूक्रेन रूस युद्ध के जारी रहने के कारण गत 40 वर्षों में ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमत खुद अमेरिका में सबसे अधिक हो गई है। मोरालेस के अनुसार यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा होने वाली महंगाई ने पिछले 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने देश के हालिया संसदीय चुनावों में हुए भारी मतदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि चुनाव परिणामों से पता चलता है कि आम जनता सशस्त्र प्रतिरोध आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करती है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में सफलतापूर्वक संपन्न हुए हालिया संसदीय चुनाव में प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला को मिली भारत जीत के बाद बुधवार को हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद करता हूं जो भारी संख्या में वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले हैं।
पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग त्सो झील के आसपास चीन अपने क्षेत्र में एक दूसरा बड़ा पुल बना रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर और जानकारों के अनुसार इससे चीनी सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिलेगी। वहीं चीन द्वारा अंजाम दी जा रही गतिविधियों से भारत सरकार भी खबर नजर आ रही है। प्राप्त समाचार के अनुसार लंबे समय से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर चले आ रहे विवाद में एक सैटेलाइट तस्वीर ने आग में घी डालने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जारी विवाद मामले में होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक टाल दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो मामले से जुड़ा कोई आदेश कल तक जारी न करे।
और अंत में यह समाचार की रेतीले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा रेत के तूफान में छिप गई। मध्य पूर्वी देश यूनाइटेड अरब इमारात में भीषण रेतीला तूफान आया जिसके कारण मौसम विभाग और ट्रैफिक विभाग को कई चेतावनियां जारी करनी पड़ी। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के कार्यक्रम के साथ मैं कायम रिजवी हाजिर हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के बारे में राष्ट्रसंघ के विशेष रिपोर्टर का बयान, लेबनान के संसदीय चुनाव और नवजोत सिंह सिद्धू को न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा। दोस्तों, ये है हमारी आज की राजनीतिक चर्चा के विषय। राष्ट्रसंघ के विशेष रिपोर्टर ने कहा है कि ईरान के विरुद्ध लगे प्रतिबंध राष्ट्रसंघ की दृष्टि में न्याय संगत नहीं है। एक समीक्षा लेकर उपस्थित हैं अहमद अब्बास।
संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष रिपोर्टर ने ईरान पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को गैर कानूनी घोषित करते हुए अमरीकी सरकार से कहा है कि खाने पीने की चीजों, दवाओं, पानी और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं के बारे में ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त करे। एक पक्षीय कदमों से मानवाधिकारों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष रिपोर्टर एल्ना दोहान ने बुधवार की शाम एक पत्रकार सम्मेलन में अपनी 12 दिवसीय ईरान यात्रा के नतीजे बयान किए। उन्होंने कहा कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वे मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा की नज़र से न्याय संगत नहीं है। इनका कोई तर्क नहीं हो सकता। इन प्रतिबंधों के चलते ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति खतरे में है। इन पाबंदियों की वजह से सामान का निर्यात, बैंकों की गतिविधियां और दवाओं की सप्लाई सब प्रभावित हुई है। इन पाबंदियों के चलते सरकार की आमदनी कम हुई है और गरीब वर्ग के लिए समस्याएं बढ़ी हैं। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए जिनके चलते ईरान का बैंकिंग सेक्टर और तेल व गैस विभाग अनेक समस्याओं में फंस गया। इन पाबंदियों के चलते ईरान की आम जनता को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक शोधकर्ताओं मैटियस नवीन क्रिश और फ्लोरियन नवी मायर ने अलग अलग देशों पर लगाई गई पाबंदियों के प्रभावों और नतीजों की समीक्षा की है। उनका कहना है कि इन पाबंदियों से समाज में गरीबी और असमानता बढ़ती है और देशों की जीडीपी प्रभावित होती है। 1991 से 2018 के बीच अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदियों से अलग अलग देशों में 3.5% गरीबी बढ़ी है, जबकि इन देशों की जीडीपी में 2% की कमी आई है। अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर रहे ईरान में भी व्यापार प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष रिपोर्टर ने कहा कि ईरान की 100 से 120 अरब डॉलर की रकम इन पाबंदियों की भेंट चढ़ गई। पाबंदियों के चलते मानवता प्रेमी सहायताओं के रास्ते में भी गंभीर रुकावटें उत्पन्न हो गई हैं। ईरान में बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी रहते हैं। इन पाबंदियों का असर शरणार्थियों पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। यही वजह है कि ईरान की सरकार के प्रवक्ता अली बहादुरी जहरूमी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष रिपोर्टर का बयान साफ जाहिर करता है कि ईरान पर अमरीका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध गैर कानूनी है और यह अमरीका की एक और बड़ी बदनामी है।
लेबनान के संसदीय चुनाव में हिजबुल्ला का वोट प्रतिशत और सीटें दोनों ही बढ़ी हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं रविश जैदी।
हिजबुल्ला महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने बुधवार रात दिए अपने भाषण में लेबनान में हुए संसदीय चुनाव के नतीजों पर प्रकाश डाला। लेबनान के संसदीय चुनाव के 4 दिनों बाद ही इस चुनाव के बारे में बहुत सारे विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह हिजबुल्ला और उसके सहयोगियों की हार है, तो वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि इस चुनाव के नतीजों ने लेबनान में प्रतिरोधक बलों की स्थिति को और मजबूत किया है। वे लोग जो लेबनान के संसदीय चुनाव में हिजबुल्ला की हार की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले चुनाव के नतीजों के मुकाबले में इस बार हिजबुल्ला की सीटें कम हुई हैं, लेकिन ये लोग 3 अहम विषय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पहला, संसदीय चुनाव में हिजबुल्ला और उसके सहयोगियों के मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है कि नहीं। दूसरे, हिजबुल्ला और उसके सहयोगियों की लेबनान की संसद में सबसे ज्यादा सीटें हैं कि नहीं। तीसरे, हिजबुल्ला और अमल की नई संसद में 28 से 31 सीटें हुई हैं कि नहीं। हिजबुल्ला की हार का राग अलाप रहे लोगों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। ऐसी टिप्पणी करने वालों की बातों से ये साफ झलकता है कि उनके मन में हिजबुल्ला को लेकर पहले से चली आ रही दुश्मनी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने बुधवार की रात अपने भाषण के जरिए दुश्मनों की एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका द्वारा निर्देशित किए जा रहे वर्षों से प्रतिरोध के खिलाफ नकारात्मक प्रचार और प्रसार के बावजूद आज स्वयं अमरीकी अधिकारी ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि लेबनान के संसदीय चुनाव में हिजबुल्ला का वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। एक और बात यह है कि लेबनानी संसद में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आमतौर पर अनुपातिक होते हैं और मूल रूप से लेबनान में सत्ता का मूल ढांचा समझौते के अनुसार ही होता है। साथ ही अनप्रतिद वंदवी समूहों की राय के बिना अधिकारियों का चुनाव करना भी संभव नहीं है। आज हमारे सामने संसदीय गुटों और राजनीतिक दलों और नए स्वतंत्र प्रतिनिधियों की सूची है। जो हुआ है, हो सकता है कि लेबनान और उसके लोगों का हित इसी में हो और इसी वजह से न इस पार्टी को और न उस पार्टी को बहुमत नहीं मिली। तीसरा बिंदु जो सबसे अहम है वो ये है कि लेबनान के संसदीय चुनाव के नतीजे प्रतिरोध विरोधियों विशेषकर अमेरिका और सऊदी अरब की खुली हार है, क्योंकि उन्होंने प्रतिरोध विरोधी गुटों में जमकर पैसे लुटाए थे ताकि प्रतिरोध को हरा सके। इस संबंध में सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि हमने अमरीका के राजदूत को देखा कि वो मतदान केंद्रों पर भटक रहे थे और वहीं अमरीकी दूतावास वोटर लिस्ट को जारी कर रहा था, जबकि सऊदी अरब के राजदूत लेबनान के चुनाव में सबसे सक्रिय लोगों में से एक थे। अंतिम बिंदु यह है कि हिजबुल्लाह की सबसे अहम और बुनियादी कोशिश ये होती है कि वो देश की समस्याओं को कम करे और जारी आर्थिक संकट से लेबनान को उभार सके। यही कारण है कि चुनाव नतीजों के आने के बाद एक बार फिर हिजबुल्ला महासचिव ने सभी मतभेदों को بلاتے ہوئے اور چناوی پرتدوندیتا ختم کرتے ہوئے دیش کی جنتا کی سمسیاؤں کے سمادھان اور عام لوگوں کے جیون کو کیسے خوشحال بنایا جائے اس پر بل دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ کسی بھی سنکٹ کا سمادھان آپسی مدبھیدوں اور دشمنیوں کو بلا کر آپسی سہیوگ سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے ہم سبھی کو ایک سنیکت بندو کی اور دھیان کیندرت کرنے کا نمنترن دیتے ہیں۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ کانگریس نیتا اور پورو کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کو ایک پرانے معاملے میں نیایالے نے سزا سنائی ہے۔ اس بارے میں پیش ہے نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
تین دشک پرانے ایک معاملے کو لے کر کانگریسی نیتا نوجوت سنگھ سدھو کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ بھارت کے اچھتم نیائلے نے 34 سال پرانے روڈ ریج کے ایک معاملے میں نوجوت سنگھ سدھو کو 1 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس سے پہلے بھارتی کرکٹ ٹیم میں شامل رہے نوجوت سنگھ سدھو کو 1,000 روپے کا جرمانہ لگا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ معاملہ 1988 کا ہے، جب روڈ ریج میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی تھی۔ اس ویکتی کے پریوار نے اس معاملے میں ریویو پٹیشن دائر کی تھی۔ پٹیالہ کے ستر نیادھیش نے 22 ستمبر 1999 کو سدھو اور ان کے سہیوگی کو اس معاملے میں ثبوتوں کے ابھاؤ اور سندیہ کا لابھ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا۔ اس کے بعد پیڑت کے پریوار نے اس معاملے میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جس میں ہائی کورٹ نے سدھو کو 3 سال کی سزا سنائی تھی۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو نوجوت سنگھ سدھو نے سپریم کورٹ میں چنوتی دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 27 دسمبر 1988 کو سدھو نے کتھت طور پر گرنام سنگھ کے سر پر وار کیا تھا، جس سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ اچھتم نیائلے کے آدیش کے بعد پنجاب کانگریس کے پورو ادھیکش نوجوت سنگھ سدھو کو یا تو سرنڈر کرنا ہوگا یا پھر پنجاب پولیس انہیں گرفتار کرے گی۔ نوجوت سنگھ سدھو نے شیرش عدالت کے اپنے خلاف دیے گئے فیصلے پر ٹپنی کرنے سے انکار کر دیا۔ نوجوت سنگھ سدھو آج پٹیالہ میں تھے، جہاں انہوں نے مہنگائی کو لے کر کیندر سرکار کے خلاف ویرودھ پردرشن کیا۔ انہوں نے ہاتھی پر سوار ہو کر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف سانکیتک ویرودھ جتایا۔ انہوں نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرسوں کے تیل اور دال کے مولیوں میں کئی گنا وردھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چکن اور دال کے مولے ایک سمان ہو گئے ہیں، جس سے پنجاب اور پورے بھارت کے کسان مدھیم ورگی اور غریب 95% پربھاوت ہوئے ہیں۔ سدھو ہاتھی پر سوار ہو کر پٹیالہ ضلع کے بھیڑ بھاڑ والے علاقے سے گزرے، جن کے ساتھ کانگریس کارکرتا بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز تھے جن پر مولیوں میں وردھی کے خلاف نعرے لکھے تھے۔ آوشک وستوں وشیش کر ایندھن، رسوئی گیس اور کوکنگ آئل کے مولیوں میں ہونے والی وردھی کے خلاف وپکشی دلوں نے کیندر سرکار کی کڑی آلوچنا کی ہے، اور وام پنتھیوں نے 25 مئی سے دیش ویاپی آندولن کا آہوان کیا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، دینک کارکرم کو ہم یہیں پر ویرام دیتے ہیں اور رخ کرتے ہیں ساپتاہک کارکرموں کا۔ سفل مہیلائیں کارکرم آپ کو ہم بعد میں سنوائیں گے، کنتو پہلے پیش ہے ایک انیہ کارکرم، آج کی بات۔
آج کی بات.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. آپ کا سواگت ہے کارکرم آج کی بات میں. میں ہوں احمد عباس. کارکرم میں ہم بات کر رہے ہیں گیہوں نریات روکنے کے بھارت سرکار کے فیصلے کی. بھارت سرکار نے دیش اور پڑوسی ملکوں میں فوڈ سیکیورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے گیہوں کے نریات پر روک لگانے کا فیصلہ کیا. سرکار کا کہنا ہے کہ ضرورت مند دیشوں کو سرکار کے سطر پر طے کیے جانے پر نریات کیا جائے گا. بھارت نے 13 مئی کو تتکال پربھاؤ سے سبھی پرکار کے گیہوں, ہائی پروٹین دوروم سے لے کر سامانیہ نرم روٹیوں کے لیے استعمال ہونے والے سبھی گیہوں کے نریات کو فری سے پروہیبیٹڈ شرینی میں ڈال دیا. گیہوں پر لگی اچانک نریات روک ایسے وقت میں لگائی گئی جب 12 مئی کو آئے آنکڑوں کے انوسار اپبھوکتا مولیہ مدرا اسفیتی اپریل میں 7.79% پر پہنچ گئی. یہ در 8 سال کے سب سے اچ استر پر ہے. وہیں خدرا کھادیہ مدرا اسفیتی بڑھ کر 8.38% ہو گئی. اکنامک ٹائمز اخبار سے بات کرتے ہوئے وپنن سچیو بی وی آر سبرامڈیم نے کہا, دنیا میں گیہوں کی بڑھتی مانگ اور آنے والے وقت میں ہونے والی سمبھاوت کمی کو دیکھتے ہوئے لوگ اناج کا بھنڈارن شروع کر سکتے ہیں, اس لیے ایسا نہ ہو تو ہم نے نریات پر روک لگائی ہے. اس فیصلے سے یہ سنشچت ہوگا کہ بھارت میں ایسا نہ ہو.
دس ایکچولی سروز تھری پرپزز. اے, اٹ مینٹینز دی فوڈ سیکیورٹی فار دی کنٹری. بی, اٹ ہیلپس ادرز ہو آر ان ڈسٹریس. اینڈ مائنڈ یو, آلدو دیر آر نیو کنٹریز وچ آر ایکچولی ان دی مارکیٹ فار بائنگ ویٹ, دیز آر پیپل ہو ٹریڈیشنلی باٹ فرام اوکرین اینڈ رشیا, پیپل لائک ایجپٹ, ٹرکی, لارج پارٹس آف نارتھ افریقہ ایٹسٹرا. ویری فیو آف دیم ایکچولی ہیو باٹ فرام انڈیا. موسٹ آف آر اسٹف از اسٹل گوئنگ ٹو آر اولڈ کسٹمرز ہو آر آلریڈی دیر. سو if those governments make a specific request, it would actually, the government would take a call on, you know, letting the wheat out. And lastly, as I said, our reliability as a supplier is being maintained by not reneging on any existing contract.
بیتے وت ورش یعنی 31 مارچ 2022 کو پورا ہونے والا سال بھارت کا گیہوں نریات 2.05 ارب ڈالر کی قیمت کے ساتھ 72 لاکھ میٹرک ٹن تھا, جو اب تک کا سب سے زیادہ نریات رہا ہے. گیہوں کی اس سال فصل کمزور ہونے کا بھی ایک کارن ہے موسم. مارچ کے مدھے سے تاپمان میں اچانک وردھی سے فصلوں کو نقصان ہوا. ویشوک پرستھتیوں نے بھی گیہوں کی قیمتیں بڑھانے میں یوگدان دیا. فروری کے انت میں روس یوکرین کی جنگ نے بھارت کے گیہوں کی مانگ دنیا میں بڑھا دی. وشو میں گیہوں کا نریات کرنے والے مکھ 5 دیشوں میں روس, امریکہ, کینیڈا, فرانس اور یوکرین ہیں. ان میں سے 30% ایکسپورٹ روس اور یوکرین سے ہوتا ہے. روس کا آدھا گیہوں مصر, ترکی اور بنگلہ دیش خرید لیتے ہیں, جبکہ یوکرین کے گیہوں کے خریدار مصر, انڈونیشیا, فلپینز, ترکی اور ٹیونیزیا ہیں. اب دنیا کے 2 بڑے گیہوں نریاتک دیش آپس میں جنگ میں الجھے ہوں تو ان کے گراہک دیشوں میں گیہوں کی سپلائی بادھت ہونا سوابھاوک ہے. ٹیکنو لیگل ایکسپرٹ ایڈوکیٹ وجے سردانا نے انتراشٹریہ بازار کی حالت اور بھارت میں گیہوں کے بھنڈاروں کی استھتی پر وستار سے بات کی. سردانہ کا کہنا تھا کہ سرکار نے گیہوں نریات پر روک لگا کر صحیح قدم اٹھایا ہے.
بالکل, میرے حساب سے یہ فیصلہ صحیح ہے سرکار کا, کیونکہ اگر میں آنکڑوں کا انالیسس کرتا ہوں تو آنکڑے بالکل چونکانے والے ہیں. شاید اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں, پچھلے سال مئی 2021 میں ہمارے پاس بفر تھا قریب 52 ملین ٹن ویٹ کا, اور جو ہماری پیک ریکوائر پیک پروڈکشن جو یا جس کو کہتے ہیں پیک پروکیورمنٹ سٹاکس جو تھے ایف سی آئی کے, وہ تھے جولائی کے مہینے میں قریب 60 ملین ٹن. اور جو لوئسٹ پروکیورمنٹ رہا اس بار لیول میں وہ رہا, جو اسٹاک رہے وہ رہے 18.9 ملین ٹن. اس کا مطلب یہ رہا کہ پچھلے سال جولائی سے لے کر فروری کے بیچ میں جو ٹوٹل کنزمپشن یا آف ٹیک ہوا ایف سی آئی سے وہ رہا قریب 41 ملین ٹن. اس سمے جو اسٹاک ہے آپ کے پاس وہ ہے ماتر 30 ملین ٹن. इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रोक्योरमेंट अभी नहीं होती है, जैसा कह रहे हैं कि भाई व्यापारियों ने माल खरीद लिया और वो अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि जिसने भी खरीदा वो कंजम्पशन के लिए तो खरीदा नहीं, ट्रेड के लिए खरीदा, और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय रेट करीब 40 के आसपास है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो ट्रेडर्स के पास स्टॉक है अगर वो सारा चला जाता है, तो आपके पास पिछले साल का अगर मैं आंकड़ा रेफरेंस लेता हूं, तो आपके पास स्टॉक्स नहीं है टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं पिछले साल के मुकाबले ही 44 मिलियन टन की जो मेरी रिक्वायरमेंट रही है, ऑफटेक रहा है एफसीआई से, अगर उसको कंपनसेट करता हूं, तो मुझे अंतरराष्ट्रीय बाजार से करीब 11 मिलियन टन खरीदना होगा। 11 मिलियन टन खरीदने का मतलब है भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आयात करता है कंट्री दुनिया में वो है इंडोनेशिया, करीब 11 मिलियन टन।
युद्ध शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में गेहूं निर्यातकों से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इन दिनों दुनिया में भारत के गेहूं की तरफ आकर्षण बढ़ने की खबरें आ रही हैं। क्या हमारे गेहूं के निर्यातकों का ध्यान इस तरफ है? भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ध्यान इस तरफ है क्या? उनके इस बयान का मतलब निकाला गया, गेहूं के निर्यातक यूक्रेन संकट के बीच भारत के निर्यातक उन देशों को गेहूं निर्यात करने के बारे में सोचें जो अब तक यूक्रेन और रूस से गेहूं खरीदते थे। नतीजा ये हुआ कि गेहूं का निर्यात भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ। पिछले 3 वर्षों में गेहूं के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई, मगर फिर अचानक सरकार का फैसला आया कि गेहूं का निर्यात रोक दिया गया है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा का मानना है कि सरकार का निर्णय समझ से बाहर है। ये अच्छी कमाई करने का समय था, सरकार ने रोक लगाकर अवसर गंवा दिया।
देखिए, जहां तक फूड इन्फ्लेशन की बात है, यानी खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति की बात है, वो खाद्य पदार्थ मतलब गेहूं और चावल की कमी की वजह से नहीं, उसके कारण और हैं जो अधिकतर तेल से निर्मित हैं। हमारे आज के स्टॉक मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए का जो पीडीएस के लिए स्टॉक है वो अभी भी 2.5 गुना है ज़रूरतों के से ज़्यादा, और चावल का लगभग 3 गुना है। अभी 1 अप्रैल को की स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, और जबकि अब खरीदी होने जाने वाली है, सरकार अब खरीदेगी, प्रोक्योरमेंट करेगी तो और बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है देश फॉरेन एक्सचेंज कमाने की स्थिति में था, और हमारे किसान एक्सपोर्ट करके और प्राइवेट सेक्टर को बेच करके गेहूं की अच्छी कीमत पाने की स्थिति में थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का ये निश्चय बिल्कुल भी, सच पूछिए अर्थशास्त्री होते हुए, मुझे समझ नहीं आया।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात। केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस साल सरकारी खरीद कम हुई है, क्योंकि प्राइवेट व्यापारियों ने एमएसपी से ज्यादा दाम पर गेहूं खरीदा। निर्यात बढ़ोतरी के मद्देनजर बाजार में घरेलू खरीद के लिए गेहूं कम मिला। कुछ व्यापारियों ने आगे दाम बढ़ने की आशंका के मद्देनजर पूरे स्टॉक बाजार में नहीं निकाले। घरेलू बाजार में भी जब खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से ऊपर हुई तो अलग अलग शहरों में गेहूं के दाम बढ़े।
बाजार में बढ़ी हुई कीमतों के मद्देनजर एक संदेश ये गया कि अभी गेहूं के भाव में तेजी रहने वाली है। इस वजह से गेहूं से बनने वाली हर चीज के दाम बढ़ गए। पिछले कुछ महीनों में ब्रेड और बेकरी आइटम्स के दाम में 8-10% दाम बढ़े हुए हैं। आटे के भाव में भी तेजी इसी वजह से देखी गई। किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह का मानना है कि सरकार के फैसले से किसानों की उम्मीद पर पानी फिर गया।
निश्चित रूप से जो स्थिति बनी है खाद्यान्न के विषय में, अभी तक हम जो है लगभग ये ढिंडोरा पीट रहे थे कि साहब हम बहुत सरप्लस हैं, कई गुना बफर स्टॉक हमारे पास जो है उससे बफर नॉर्म्स जो उससे ज्यादा हमारे पास खाद्यान्न है, खाद्यान्न सड़ रहा है भाई, इससे हमें एथेनॉल बनानी पड़ सकती है। हमने खूब फ्री बांटा, 5 किलो वाला जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में बांटा जाता है वो भी बांटा। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने अलग से योजना चलाई थी गरीब कल्याण के लिए, उसमें भी हमने इसको बांटा, फिर भी हमारे पास इतना बड़ा स्टॉक है। ठीक है, आपने बांट दिया, बहुत अच्छी बात है। सरकार डिनायल मोड में भी है और सरकार इन्फ्लेशन महंगाई दर बढ़ने की वजह से पैनिक मोड में भी आ गई है।
फिलहाल सरकारी स्टॉक में जितना गेहूं पहले हुआ करता था उसके मुकाबले में इस बार कुछ कम है। एक वजह तो पैदावार की कमी है जिसके कारण सरकारी खरीद पर भी असर पड़ा। दूसरी वजह प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ाया जाना है। इस साल 1 अप्रैल सेंट्रल पूल में गेहूं का ओपनिंग स्टॉक लगभग 190 लाख टन था। केंद्र सरकार ने लगभग इस साल 195-200 लाख टन ही गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा। वर्षों बाद यह नौबत आई है कि जितना गेहूं पिछली खरीद का बचा है उतना ही नए साल में खरीदने का लक्ष्य है। वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह का मानना है कि सरकार को किसानों की तकलीफों और समस्याओं का एहसास ही नहीं है।
तो पहला तो है उत्पादन आपका कम है, आपने लापरवाही बरती। आज हम मिड मई में बैठे हैं, जो प्रोक्योरमेंट सीजन है वो आपका मिड जून में खत्म होता है और सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक बार भी ये स्पष्टीकरण लेकर नहीं आई कि देश में उत्पादन की क्या स्थिति है, जबकि उसको आना चाहिए। फूड सेक्रेटरी क्या बोलेगा? दूसरे जो कॉमर्स मिनिस्टर है वही फूड मिनिस्टर भी है। आप झंडा लेके घूम रहे हैं दुनिया में कि हम एक्सपोर्ट कर डालेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि उसमें जाकर के कहा जर्मनी कहाँ गए थे या वहां भाषण दिया कि देखिए हमारा देश दुनिया क्राइसिस में है, हम जो है वो सारे वीडियो सबके सामने है। इंटरेस्टिंगली कल ही हमने एक खबर की थी, कल का 9 देशों को डेलीगेशन जाएगा जी हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि निर्यात के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो पहला तो मेरा मानना है गवर्नमेंट डिनायल में है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई उत्पादन कम है। दूसरे मेरा इसमें एक बड़ा पॉइंट ये है कि आपने बोनस में दिया किसान के साथ, आपने ज्यादती की है, उसको कम से कम 10,000 रुपया एकड़ का नुकसान हुआ है, आपको उसे कंपनसेट करना चाहिए। और ये किसानों ने मांग भी शुरू कर दी है कि भाई हमें इसका, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल कैलेमिटी है ना, जो भी वेदर में जो चेंजेस आए किसान की तो कोई गलती नहीं है इसमें। पहले आपने उसको खाद नहीं दिया, फिर मौसम की मार पड़ गई, आप कंज्यूमर के लिए तो भाग लिए कि साहब देश में दाम ना बढ़ जाए। मेरा पॉइंट है कि उस किसान का क्या होगा।
इस समय दुनिया के स्तर पर फूड सिक्योरिटी का मुद्दा काफी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। निश्चित रूप से भारत में भी ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही किसानों के मुनाफे का मुद्दा भी अपनी जगह बेहद महत्व रखता है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में बड़ी सूझबूझ के साथ और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेने की अपेक्षा है। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। सैयद मीसम और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। हमेशा की तरह आज फिर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय ईरान की एक सफल महिला से करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए।
दोस्तों, फातिमा नाहिदी पहली ऐसी ईरानी महिला हैं जो सद्दाम की जेल से रिहा होकर वतन वापस लौटी थी। फातिमा नाहिदी ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के समय ईरानी राष्ट्र अपने देश की रक्षा कर रहा था, तब वह युद्ध के मोर्चे पर पहली पंक्ति पर मौजूद देश के जियालों की सहायता करने में व्यस्त थी और वर्ष 1980 में उन्हें सद्दाम की सेना ने युद्धबंदी बना लिया था। ईरानी राष्ट्र हमेशा इराक में बासी शासन की जेलों में वर्षों की कैद रहने के बाद वतन लौटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद करता है और उन्हें पूरा सम्मान देता है। आज हम जिस सफल ईरानी महिला के बारे में जानेंगे, वह एक डॉक्टर हैं और उन्होंने पवित्र प्रतिरक्षा के दौरान विभिन्न युद्ध के मोर्चों पर पहुंचकर देश की रक्षा कर रहे जियालों का इलाज किया और उनकी मदद की। इसी दौरान उन्हें दुश्मन सेना ने गिरफ्तार करके युद्धबंदी बना लिया था।
फातिमा नाहिदी कई वर्षों तक बासी शासन की विभिन्न जेलों में रहने के बाद अपने वतन लौटने में कामयाब हुईं। इराक की जेल से रिहा होने के बाद फातिमा नाहिदी जब ईरान लौटी तो उनके अंदर मौजूद देश की सेवा का जज्बा पहले से कहीं अधिक था। उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और उन्होंने अपने अनुभवों को देश की आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की ठान ली और उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लेते ही छात्रों को पढ़ाने में भी व्यस्त हो गईं और आज वो बहिष्ठी विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के संकाय की सदस्य हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की पवित्र प्रतिरक्षा के 8 वर्षों के दौरान इतिहास ने उन महिलाओं की पीड़ा और प्रतिरोध को देखा है जिनके नाम हमारे शहर के रीति रिवाजों और सड़कों को नहीं सजाते हैं, लेकिन जिनकी स्मृति हमारे दिलों में घर कर गई है, क्योंकि प्रतिरोधकर्ता महिलाएं दुश्मन के खिलाफ ईरानी राष्ट्र की मौजूद प्रतिरक्षा, दृढ़ संकल्प, प्रयास, प्रतिरोध और बलिदान की एक बेहतरीन मिसाल हैं।
पवित्र प्रतिरक्षा के समय में ईरानी महिलाओं की भूमिका घर से लेकर युद्ध के मोर्चे की अग्रिम पंक्ति तक जारी रही। एक तरफ उन्होंने अपने पति और बच्चों को मोर्चों पर भेजा, दूसरी तरफ वे सेनानियों का समर्थन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए अग्रिम पंक्ति में मौजूद रहीं। युद्ध के मोर्चों पर इन बहादुर और बलिदानी महिलाओं ने उपस्थित होकर जहां देश की रक्षा कर रहे जियालों के मनोबल को बढ़ाया तो वहीं उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करने का भी काम अंजाम दिया। ईरानी राष्ट्र पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के दौरान महिलाओं की बहादुरी और बलिदान ने आज ईरानी महिला समुदाय को गौरवान्वित किया है और दुनिया को ऐसी बलिदानी, साहसी और सशक्त महिलाओं से परिचित कराया जिन्होंने मजबूत इरादों के साथ धैर्यपूर्वक बासी शासन का विरोध किया। महिलाओं के धीरज, बलिदान और धैर्य के एक स्पष्ट उदाहरण के तौर पर फातिमा नाहिदी को दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। सद्दाम की जेल से रिहा होने वाली पहली स्वतंत्र महिला जो ईरानी महिला समुदाय के लिए साहस और देशभक्ति का एक मॉडल है।
एक 24 वर्षीय लड़की जिसने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था और वो हमेशा देश के दूरदराज वंचित क्षेत्रों की यात्रा किया करती थी। एक दिन जब वो ईरान के बम शहर के एक गांव में थी तभी उसने युद्ध के आरंभ होने की खबर सुनी और तुरंत ही फैसला किया कि वो मेडिकल सहायता के लिए युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाएगी। एक दिन फातिमा नाहिदी चिकित्सा दल के साथ उपचार और राहत के काम के लिए दक्षिणी मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में जाती हैं, जबकि उस मोर्चे पर दुश्मन का कब्जा था। नाहिदी इस बारे में बताती हैं कि 12 अक्टूबर वर्ष 1980 रविवार का दिन था। हम खुर्रम शहर के नज़दीक शलमचे शहर में मेडिकल टीम के साथ मिलकर घायलों और शहीदों को स्थानांतरित कर रहे थे। तभी बासी सेना ने हमें बंदी बना लिया और लगभग 4 वर्षों तक हम इराक की जेलों में रहे।
फातिमा नाहिदी बताती हैं कि मैं पहली ऐसी ईरानी महिला थी जो युद्ध के मोर्चे की पहली पंक्ति पर बंदी बनी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद दो अन्य ईरानी महिलाओं को बासी सेना ने बंदी बना लिया था। बंदी बनाई गई दोनों ईरानी महिला आबादान नर्सरी के बच्चों को ले जाने के लिए शिराज गई थी, लेकिन खुर्रम शहर लौटते वक्त उन्हें महाशहर आबादान मार्ग पर बंदी बना लिया गया। इस घटना के एक हफ्ते बाद ही श्रीमती आजमुदा, जो अपने परिवार वालों से मिलने शिराज गई थी, अपनी ड्यूटी पर लौटते समय महाशहर आबादान मार्ग पर उन्हें भी बासी सेना ने बंदी बना लिया था। बंदी बनाई गई महिलाओं को पहले एक अस्पताल में रखा गया और फिर अल रशीद राजनीतिक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने जीवन के सबसे मुश्किल समय को बिताया। खटमल, चूहे, बासी सैनिकों द्वारा बंदियों की बैरिकों को ठंडा करना, कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं की भयानक आवाजें और कई अन्य समस्याएं उन दिनों की दिल दहलाने वाली यादें हैं।
ईरान पर इराक के बासी शासन द्वारा थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के दौरान पकड़े गए ईरान के कई कमांडरों और अधिकारियों को भी उसी अल रशीद राजनीतिक जेल में कैद किया गया था। शहीद तुनगोयान, पेट्रोलियम मंत्री और तीमसार मोहम्मदी भी उन हस्तियों में से हैं कि जिनके नामों का उल्लेख फातिमा नाहिदी ने अपनी किताब दौरे दरहाई बस्ते अर्थात बंद दरवाजों के काल नामक किताब में किया है। जेल में इन सभी का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन बगल की बैरिक में बंदियों को दी जाने वाली यातनाओं और उनकी चीखों से उनकी पहचान की जा सकती थी। बाद में उन्होंने शिविरों में ऐसे लोगों को देखा जो उसी जेल में कैद थे और उनकी आवाजों को सुना था, लेकिन एक दूसरे को नहीं देखा था। आखिरकार बासी शासन की जेल में कैद ईरानी महिला बंदियों ने भूख हड़ताल कर दी। मासूम आबादी, शमसी बहरामी, हलीमे आजमुदे और फातिमा नाहिदी द्वारा जेल में की गई भूख हड़ताल के आगे जेल के अधिकारी और बासी शासन के कमांडरों को झुकना पड़ा और भूख हड़ताल करने वाली चारों बहादुर ईरानी महिलाएं अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हुई। रेड क्रॉस ने इन चारों ईरानी महिलाओं का नाम दर्ज कर लिया और उन्हें मूसिल में स्थित शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया।
अबू तौराबी फातिमा नाहिदी और उनकी साथियों से कहते हैं कि आपके साहस और पवित्रता ने हमें गौरवान्वित किया है। आप लोगों ने जेल में जो कठिनाइयां और कष्ट सहे हैं उसे लेकर हम शर्मिंदा हैं, और यही कारण है कि जेल में हम अपनी सभी कठिनाइयों और कष्टों को भूल गए। फातिमा नाहिदी इस संबंध में कहती है कि हमें अल रशीद जेल लेकर गए। 5 मंजिले की यह एक विशेष सुरक्षा जेल थी। यह वही जेल थी जिसके बारे में कहा जाता है कि शहीद सदर को इसी जेल की निचली मंजिल में शहीद किया गया था। उनके द्वारा दी जाने वाली यातनाएं ऐसी थी कि कभी हवा को बहुत ठंडा या गर्म कर दिया जाता था, या फिर हवा आने के सभी रास्तों को बंद कर दिया जाता था ताकि ऑक्सीजन न पहुंच सके, या पानी को काट दिया जाता था। बासी शासन के सैनिक हमारे सिर और शरीर पर चमड़े के केबलों से प्रहार करते थे। उन चमड़े के केबलों में लोहे के तार होते थे, लेकिन इन सब के बावजूद वे हमें झुका नहीं सके और हमें अपनी मांगों से पीछे नहीं हटा सके। उस समय हमारी मांगें केवल यह थी कि हम अपने परिवार को पत्र लिख सकें।
एक बार मासूम आबादी ने बासी सैनिकों के हाथों से लोहे के तारों से भरे चमड़े के केबल को छीन लिया और जितनी ताकत से हो सकता था उन्होंने उस सैनिक के शरीर और पैर पर उसे दे मारा। उनके इस काम को देखकर मोहम्मद जवाद तुनगोयान को जोश आ गया। वो जो दूसरी बैरिक में थे चीख कर बोले, नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब। दूसरे पुरुष बंदियों ने भी एक साथ एक आवाज में बशीरुल मोमिनीन के नारे लगाए। अंततः प्रतिरोधकर्ता महिलाएं भूख हड़ताल पर चली गईं। 20वां दिन था जब भूख हड़ताल ने अल रशीद जेल के कमांडरों और बासी शासन के एजेंटों को झुकने पर मजबूर कर दिया और चार प्रतिरोधकर्ता ईरानी महिलाओं ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। रेड क्रॉस ने इन चारों ईरानी महिलाओं का नाम दर्ज कर लिया और उन्हें मोसुल में स्थित शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया।
चश्मदर चश्मे आनान नामक अपनी यादों की एक अन्य किताब में डॉक्टर फातिमा नाहिदी लिखती हैं कि जेल वास्तव में एक विश्वविद्यालय था जहां हमने प्रतिरोध, बलिदान और आध्यात्मिकता का पाठ सीखा। कैद में रहना मेरे लिए एक दिव्य उपहार था जिसे मैं ईश्वर द्वारा मेरे ऊपर की गई विशेष कृपा मानती हूं। मैं कृपालु ईश्वर का इस कृपा के लिए सदैव आभार व्यक्त करती हूं।
फातिमा नाहिदी ने अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद तहरान में तरबियत मुदर्रिस विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी। वर्तमान में वे अन्य वैज्ञानिक जिम्मेदारियों के अलावा देश की नर्सिंग वैज्ञानिक संघ की भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने नर्सिंग और उसकी गतिविधियों के संबंध में 18 वैज्ञानिक लेख लिखे हैं जिन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। ईरान सहित दुनिया की सभी न्याय प्रेमी महिलाएं ऐसी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों का अभिवादन करती हैं और इनसे प्रतिरोध, प्रयास और गरिमा का पाठ सीखती हैं। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। श्रोतो, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभ रात्रि। Thank you.